ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोल लीजिए, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित जन्माष्टमी और तत्पश्चात नंद उत्सव के इस पवित्र अवसर में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने यहाँ पर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से उतरकर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए, ये कथा श्रवण किया। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की कथा सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई है। भागवत के अनेक अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की लीला बताई गई है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उन लीला का श्रवण करेंगे जिस लीला को उनके भक्त सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस लीला में भक्त के द्वारा भगवान को बांधा गया है। वैसे तो इस संसार में भगवान की माया से सब लोग बंधे हुए हैं, सब लोग बद्ध है इस संसार में। वैसे तो आज का दिन स्वातंत्र दिन है, हमारा भारत वर्ष स्वतंत्र, अरे बोल, लेकिन के बच्चे हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्व संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, प्रमाद मोह तमसा भवतो अज्ञानम एवच। तमोगुण में रहने पर नींद आती है, पाप करते हैं। रजोगुण होने पर व्यक्ति उत्पात करता है, परंतु सत्वगुण में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के लिए सत्वगुण चाहिए, और सत्वगुण का पहला गुण है शांति। बिना शांति के आप भौतिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक भागवत और गीता का ज्ञान है। बी सीरियस, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं और बहुत सुंदर लीला उनके द्वारा संपन्न हुई है। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला भागवत के दसम स्कंद के नवम अध्याय में बताई गई है। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा, एक समय की यह बात है। किस समय की बात है? आज से 5000 वर्ष पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे और बहुत सुंदर लीला इसके पिछले अध्यायों में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जब बहुत छोटे थे और दो पैर पर चलना सीख गए तो सबके घर पर जा जाकर उत्पात मचाते थे। क्या क्या उत्पात करते थे, भागवत के दशम स्कंद के सप्तम अध्याय में इसका वर्णन है। इतने उत्पात करते थे कि ब्रज वृंदावन की सारी गोपियां मिलकर यशोदा मैया के पास आती थी और भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करती थी। मैं आप सबको इस बात से सतर्क करना चाहता हूं, श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी यह लीला सुनाने से पहले ही लिख दिए, बोल दिए कि वास्तव में ब्रज वृंदावन की गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती थी, परंतु इसलिए नहीं कि कृष्ण के उत्पात से यह सब गोपियां बहुत दुखी थी या यशोदा मैया कृष्ण को मारे डांटे धमकाए, इसलिए नहीं आती थी। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, ब्रज वृंदावन की यह सारी गोपियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर आती थी, दर्शन करना चाहती थी। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को देखने की जब लालसा उमड़ पड़ती थी तो उनको देखने के लिए कुछ बहाना चाहिए था और शिकायत का बहाना लेकर आ जाती थी। क्या क्या शिकायत करती थी, एक समय की बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दिन समस्त गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आई और कृष्ण दूर से ही देख लिए कि आज ये लोग आ रही हैं हमारी शिकायत लेकर। तुरंत कृष्ण अपनी मैया के पास जाकर बैठ गए। समस्त गोपियां आई और आकर यशोदा मैया को कहती हैं, ब्रजरानी या तो तुम्हारा लाला इस गांव में रहेगा या तो हम रहेगी, हम तुम्हारे लाला के साथ इस गांव में नहीं रह सकती। यशोदा मैया पूछती है, क्या किया मेरे लाला ने, तब कहती है, क्या नहीं किया इसने, बहुत उत्पात मचा रहा है, हमें हमारा जीना हराम हो गया, बताओ क्या किया मेरे लाला ने। तो एक गोपी कहती है, क्या बताए यशोदा जी, हम सब गोपियां घर के काम में व्यस्त रहती हैं, तो यह तुम्हारा लाला हमारे घर पर आता है और जहां पर गाय और बछड़े बंधे रहते हैं वहां घुसकर बछड़े को छोड़ देता है और बछड़े अपनी माँ गाय के पास जाते हैं और उसका सारा दूध पी लेते हैं। अच्छा, यशोदा मैया कहती है, मेरा लाला ऐसा करता है तो फिर तुम्हें उसे डांटना चाहिए। तो एक गोपी कहती है, अरे हम जब इसे डांटती हैं तो ये हंसने लगता है। और एक गोपी कहती है कि मैं जब इसे डांटती हूं तो ये ऊपर से मुझे डांटता है और डांटते हुए क्रोध में आकर कहता है, मैंने मेरे बछड़े को छोड़ा है कि तुम्हारे बछड़े को छोड़ा है, तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा बलवान होगा। दिन भर अपने मां से बछड़े को दूर रखती हुई बेचारा देखो कितना सूख गया है, मरने वाला है, और मैंने छोड़ दिया और दूध पी लिया तो कौन सा बुरा काम किया है। मेरे बछड़े से यदि दूध पिलाया होता तो ठीक है, तुम डांटती, तुम्हारा बछड़ा दूध पी रहा है वो बलवान बनेगा, मुझे क्या उसमें। इस प्रकार से डांटता है। दूसरी गोपी कहती है, क्या बताए यशोदा जी, दूध पी जाए कोई बात नहीं, परंतु जैसे ही हम उस बछड़े को बांधने के लिए घर से बाहर निकलती है तो ये पूरा छिप करके घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर ये मक्खन ढूंढता है, दूध दही मक्खन, और चुरा करके खा लेता है। यशोदा मैया ने कहा कि हमारे घर पर दूध और मक्खन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, ब्रज के राजा थे, हमारे पास गाय की कमी नहीं है, दूध की कमी नहीं है, मक्खन की कमी नहीं है, यह मेरा लाला आपके घर पर चोरी करने क्यों आएगा? गोपिया कहती, क्या पता इसको चोरी का माल खाने की बहुत आदत लग गई है। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, यदि तुम सामने से इसे दूध मक्खन और दही दे दो तो चोरी नहीं करेगा, सामने से दे दो, बेचारा चोरी नहीं करेगा। तो कुछ गोपियों ने कहा कि हमने यह भी करके देखा, जब ये तुम्हारा लाला कृष्ण हमारे घर पर आता है और हम जब उसे सामने से दूध दही और मक्खन दे देती है तो वो हमें डांट कर कहता है, हम भिखारी थोड़ी ना है, हम इस ब्रज के राजा के पुत्र हैं, हम फोकट का धन नहीं खाते हैं, मेहनत से कमा कर खाएंगे, मेहनत करके खाएंगे, हम भिखारी समझ लियो हमें, ऐसा कहता है। भागवत में यह सारी शिकायत बताई गई है। वत्सान मुंचती क्वचित समये, तो ये चोरी करने के लिए हमारे घर में घुस जाता है और कैसे भी करके मक्खन दूध दही को ढूंढकर खा लेता है। यशोदा मैया कहती है, तो फिर आपको अपने दूध दही की जो हांडी है उसे किसी अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। एक गोपी कहती है, मैया ये भी करके देखा, हम अंधेरे कमरे में रखते हैं परंतु उसके गले में पद्मराग मणि है और उसके शरीर की कांति इतनी है कि वह किसी भी अंधेरे कमरे में चला जाता है तो वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, कैसे भी करके ढूंढ लेता है। तो यशोदा मैया ने कहा, तो ठीक है, भले प्रकाश हो जाए तो अपनी मटकी को थोड़ा ऊपर बांध देना चाहिए छत पर। एक गोपी कहती है, मैया ये भी करके देखा, जब हम मटकी को छत पर बांधती है तो ये तुम्हारा ये कृष्ण ढूंढता है, वहां टेबल या उखल कुछ होता है तो उसके ऊपर चढ़कर उसे उतार लेता है। यशोदा मैया ने कहा, ऐसा नहीं, और थोड़ा ऊपर बांधना चाहिए। एक गोपी ने कहा, यह भी करके देखा, हम जब बहुत ऊपर बांधती है तो ये लकड़ी ढूंढता है और लकड़ी ढूंढकर बिल्कुल बीचों बीच एक छिद्र करता है, पूरी मटकी को नहीं फोड़ता है। ये लगता है छोटा है परंतु कितना बुद्धिमान है हम जानती हैं। छोटा सा छिद्र करता है और दूध और मक्खन दही जब गिरते हैं तो सबसे पहले मुंह खोलकर खड़ा रह जाता है, स्वयं पी लेता है और बाद में सबको। यशोदा मैया ने कहा, तो और ऊपर बांधना चाहिए, बिल्कुल छत के ऊपर। एक गोपी ने कहा, यह भी करके देखा, मैया जब बहुत ऊपर बांधती है तब नीचे कुछ बालक खड़े रहते हैं, उसके ऊपर कुछ और उसके ऊपर और सब के ऊपर ये आपका लाला खड़ा रहता है और कैसे भी करके मटकी को उतार देता है। इस प्रकार से ये कृष्ण उत्पात मचाते थे। और क्या बताए मैया, यदि हम हमारे घर पर यह सोचकर कि कृष्ण आएगा और चोरी करके यह सब लेकर जाएगा, यह सोचकर हम घर पर मक्खन दूध और दही रखती ही नहीं है, तो जब यह हमारे घर पर आता है उसे दूध दही मक्खन नहीं मिलता है तो यह बहुत गाली देता है, कीड़े पड़े तुम्हारे शरीर में, तुम सब लोग भिखारी हो जाओ, मेरे लिए भोजन नहीं रखा है, इस प्रकार से गाली देता है और श्राप देता है। हे, इतना छोटा परंतु श्राप कितना बड़ा देता है, दरिद्रता छा जाए, तुम्हारे एक नहीं पूरे परिवार में आने वाली 10 पीढ़ी तक सब लोग भिखारी बन जाए। हम तो डर जाती है कहीं सच्ची में यह श्राप हो गया तो हम लोग मर जाएंगे। ये सत्य बात है भक्तों, जिस घर में भगवान को खाने के लिए कुछ नहीं बनता है उस घर में दरिद्रता छा जाती है। इसलिए हम जीवन में घर पर कभी भी भोजन करें तो सबसे पहले भगवान को खिलाना चाहिए। सब भोगों के भोगता भगवान है, तत्पश्चात प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो आप देखिए, भगवान को भोग न लगाकर यदि हम कुछ भी खाते हैं तो वो पाप खाते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजित, पाप खाते हैं। और सुदामा की कथा तो आप जानते ही होंगे, सांदीपनी मुनि की पत्नी ने चने दिए थे सुदामा और कृष्ण के लिए। कृष्ण ने अपना चना सुदामा को दे दिया, कहा मुझे भूख लगेगी तब मुझे दे देना। और सुदामा कृष्ण को दिए बिना कृष्ण के चने भी स्वयं खा गए। और कृष्ण को भोजन नहीं खिलाने के कारण सुदामा के जीवन में ऐसा दिन आया, रहने के लिए घर नहीं बचा, पहनने के लिए कपड़े नहीं और खाने के लिए भोजन तक नहीं रहा। महीने महीने तक वे, उनकी पत्नी सुशीला और तीन तीन चार चार बच्चे भूखे रहते थे। ऐसी दरिद्रता। हो सकता है वर्तमान में हम सुखी संपन्न रहे, परंतु भविष्य बहुत बिगड़ जाएगा। भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान को भोग लगाकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो भगवान बहुत श्राप देते हैं, बहुत श्राप देते हैं। और श्राप देने के बाद एक गोपी कहती है, जब उसे घर पर कुछ नहीं मिलता है तो हमारे छोटे छोटे बच्चे सोए हुए रहते हैं, उसे चिमटी काटकर दौड़ चला जाता है। लड़के रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं, हाय रे हाय करते हैं। इस प्रकार से तुम्हारा कान्हा बहुत उत्पात मचा रहा है। यशोदा मैया, या तो ये ब्रज में रहेंगे रहेगा या तो हम रहेगी, इसका कुछ कीजिए आप। यशोदा मैया उस समय तो कृष्ण को नहीं कहा, यशोदा मैया ने कहा ठीक है। जब यशोदा मैया ने गोपियों की शिकायत से कृष्ण को नहीं डांटा तो कृष्ण गोपियों को अंगूठा दिखाते हैं, देखा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लीला कर रहे थे, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा, एक समय की बात, एकदा एक प्रश्न होता है, एकदा माने किस समय की यह बात है। आचार्य गण लिखते हैं दिवाली के दिन, दिवाली के दिन की यह बात है। गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी, नंद महाराज की गेहिनी पत्नी जिनका नाम यशोदा था। वास्तव में यशोदा का अर्थ ही होता है, यश का अर्थ होता है फेम, और दा का अर्थ होता है दान करना। जो संसार में सबको भक्ति का दान करती है उसे यशोदा कहा जाता है। ऐसी यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी थी, एकदा दिवाली के दिन की यह बात है, उनके घर पर कई सारे नौकर चाकर दास दासियां रहते थे। श्रीपद वल्लभाचार्य लिखते हैं नंद बाबा के घर पर चार प्रकार के नौकर रहते थे। एक प्रकार के नौकर उनके खेत में काम करने वाले, एक प्रकार के नौकर उनके गाय बछड़ों का ध्यान रखने वाले, एक प्रकार के नौकर उनके उनका घर का ध्यान रखने वाले, और एक प्रकार के कृष्ण का ध्यान रखने वाले। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दिवाली के दिन भोर में सुबह 3:30 बजे यशोदा मैया गृह दासीसु, घर पे जितने भी दास दासी आते ये सबको कर्मांतर नियुक्तासु, सबको अलग अलग कामों में लगा दिए। दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन प्रायः हमारी माताएं घर साफ इत्यादि ये सब काम करती हैं। तो गांव में रहने वाले करते हैं, मॉडर्न माताएं तो ये नहीं करती हैं, करवाती हैं। यहां ऐसा नहीं लिखा है नंद बाबा साफ कर रहे थे, यशोदा मैया, ये स्त्रियों के ऊपर ये भार है घर का ध्यान रखे, घर को साफ रखे। तो घर के अलग अलग कामों में सभी दास दासियों को लगा दिया, कर्मांतर नियुक्तासु, सब लोग अपना अपना काम करने लगे। तो प्रश्न हुआ यशोदा मैया क्या कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निर्म मंथ स्वयं दधि, यशोदा मैया स्वयं दही का मंथन कर रही थी। स्वयं शब्द से यह घोषित होता है कि यशोदा मैया जीवन में पहली बार दही को मथने बैठी है। आज तक यशोदा मैया ने दही से छाछ और मक्खन नहीं बनाया था, जीवन में पहली बार यह काम करने चली है। क्यों? यदि प्रश्न हो कि आज तक यशोदा मैया दही से छाछ और मक्खन नहीं बनाई तो आज बनाने का क्या कारण है, यशोदा मैया ने सोचा कि गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि कृष्ण सबके घर पर चोरी करने के लिए जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? हमारे घर का मक्खन न खाकर कृष्ण दूसरों के घर पर क्यों जाता है? और प्रायः सभी मां के हृदय में ये एक भय होता है, जैसे यदि कोई बालक स्कूल से किसी का रबर चुरा कर आए, आज रबर चुराया है, कल किसी का कंपास चुराएगा, कल परसों धन चुराएगा और फिर बड़ा चोर बन जाएगा, सभी को यह डर रहता है। इसलिए पहले से ही उनकी आदत को बदल देना चाहिए। यशोदा ने मन में सोचा कि कृष्ण आखिर क्यों हमारे घर का माखन नहीं खाता है? यद्यपि मक्खन की कमी नहीं थी, मक्खन के क्वालिटी की भी कमी नहीं थी, सबसे उत्कृष्ट मक्खन, उत्कृष्ट दही और दूध नंद बाबा के घर पर था, फिर भी कृष्ण अपने घर का दूध दही और मक्खन नहीं खाते थे, दूसरों के घर से खाते थे। तो भक्तों, दूसरों के घर से खाने का पहला कारण तो यह है, वे दूसरों को आनंद देना चाहते थे, क्योंकि जब तक गोपियों के घर पर जाकर कृष्ण मक्खन न खाए तब तक गोपियों को नींद नहीं आती थी, उनको चैन नहीं पड़ता था। गोपियों को आनंद देने के लिए उनके घर पर जाते थे और चोरी करते थे। इस संसार में एक ऐसा धर्म है, नाम लेना नहीं चाहता हूं, ऐसा मत है जो कहते हैं कि कृष्ण हमारे भी भगवान बनेंगे। तो मैंने पूछा, तो अब क्या है, कृष्ण आपके भगवान बनेंगे तो अभी क्या है? कहते हैं अभी वो नरक में है ना, मूर्ख कही के कृष्ण नरक। मैंने पूछा नरक में क्यों है? कहते हैं ब्रज वृंदावन के लोगों को बहुत दुखी किया है, इसलिए चोरी बहुत किया, इसने चोरी किया इसलिए उसको नरक में डाल दिया। अरे भगवान की चोरी चोरी नहीं है, उनके कर्म दिव्य है। भगवान कृष्ण किसी के घर से चोरी करते हैं तो जिसके घर पर चोरी हुई है वे दुखी नहीं होते हैं, वे सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अरे यह सब छोड़ दीजिए, केवल एक क्षण के लिए सोच लीजिए, आपके घर पर आज के दिन में कृष्ण आकर दो रोटी खाकर चले जाते हैं तो आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? साक्षात कृष्ण जिसके घर पर मक्खन दूध दही खाता है, क्या वे दुखी होंगी? मूर्ख लोगों को इतनी भी बुद्धि नहीं है, भगवान जिसके घर पर जाकर खाते हैं वे संतुष्ट होते हैं, सुखी होते हैं। कहते नरक में है, दुखी किए, खाक दुखी किए। नरक में तो आप लोग जाओगे, भगवान के ऊपर इतना आक्षेप लगाते हैं। भगवान के कर्म को कोई समझ नहीं सकता है। आज लोग भगवान की लीला को सुनते हैं तो अपनी दृष्टि से सुनते हैं, अपनी बुद्धि से सुनते हैं। भगवान के कार्य हमारे जैसे नहीं है, हम यदि ऐसी चोरी करेंगे तो जेल में बंद कर देंगे, भगवान चोरी करेंगे तो जेल में नहीं, उनके कार्य दिव्य है। सब लोग को सुखी करना चाहते थे इसलिए भगवान अपने घर का मक्खन नहीं खाते थे। और दूसरा भाव यह है कि कृष्ण अपने घर का मक्खन इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि कृष्ण के घर पर मक्खन बनाने वाले जो थे वे दास दासियां थे, उनकी मां मक्खन नहीं बनाती थी। भगवान भाव के भूखे हैं, धन और लोभ लोभी नहीं है भगवान, भाव चाहिए, भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि यशोदा मैया के हाथ से मक्खन नहीं बनता था इसलिए वे भोजन नहीं करते थे, इसलिए अपने घर का मक्खन नहीं खाते थे। इस संसार में भी देखा गया है कुछ लोग बाहर से वड़ा पाव खरीद कर लाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, कभी नहीं खाएंगे। देखिए लीला में बिल्कुल प्रकट है, लीला हमने बहुत बार सुनी है परंतु लीला का जो मर्म है यह समझने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गाय और उसमें भी उत्कृष्ट, कृष्ण को जो मक्खन दिया जाता था जानते वो कौन सा मक्खन था? 9 लाख गाय का दूध निकलता था, वह दूध 100 गाय को पिलाया जाता था और वह 100 गाय जो दूध देती थी वह दूध 10 गाय को पिलाया जाता था और वह 10 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाता था, उस गाय का नाम था पद्मगंधा गाय। और जब वह सभी गाय का दूध वह 1 गाय पीती थी, वह पद्मगंधा गाय जो दूध देती थी उस दूध से कमल की सुगंध आती थी। आज की तरह वेनिला एसेंस और रोज का एसेंस नहीं डालना पड़ता था, स्वाभाविक गाय के थन से कमल की सुगंध, उस दूध से कमल की सुगंध, और उस दूध का दूध घी मक्खन कृष्ण को पिलाया और खिलाया जाता था। फिर भी वे नहीं खाते थे, क्यों? क्योंकि बनाने वाले बाहर के लोग थे। कृष्ण भूखे नहीं है, उसे भाव चाहिए। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा कि संसार, आज तक मैंने अपने हाथ से कृष्ण को भोजन नहीं खिलाया, इसलिए कृष्ण दूध और मक्खन नहीं खाता है। वास्तव में हम जब हमारे हाथ से बनाते हैं ना, तो उसमें भाव होता है। आप देखिए, भोजन तो होटल में वेटर भी कराता है, कितना प्रेम से परोसता है, प्लेट देता है, सब्जी डालता है, सर कितनी चाहिए, ज्यादा कम, दो गाली भी दे देंगे तो भी चुप रहेगा। होटल का वेटर भी भोजन कराता है और घर में पत्नी भी भोजन कराती है, दोनों भोजन कराते हैं, परंतु जमीन आसमान का अंतर है। होटल का वेटर जो भोजन करा रहा है, उसके पीछे उनका भाव है मुझे पैसे मिलेंगे, परंतु पत्नी जो भोजन कराती है ना, वो प्रेम से भोजन कराती है, उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है, इसे भाव कहते हैं। तो इस संसार में हम प्रेम से, भाव से भोजन बनाएंगे तब भगवान खाएंगे। और भाव से भोजन कैसा होना चाहिए? आज कई लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं, परंतु भाव नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी है, प्रभु जी ने कहा है, लोग कहते हैं इसलिए खिलाते हैं। भाव होना चाहिए। कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? कृष्ण को जो चाहिए वे वो मैं बनाऊंगी, और फिर बचेगा वह मैं खाऊंगी या खाऊंगा। नहीं तो आज लोग अपने लिए पिज्जा और बर्गर बनाते हैं, भगवान को दिखा देते हैं और कहते हैं प्रसाद खा रहे हैं। भागवत में कभी नहीं सुना इसमें भगवान श्री कृष्ण पिज्जा और बर्गर खाए हैं। हाँ, यह सुनते हैं मक्खन खाते हैं, दही खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, ये सब कभी नहीं सुना। भाव होना चाहिए। यशोदा मैया ने सोचा कि आज तक मैं अपने हाथ से मक्खन नहीं बनाई, इसलिए कृष्ण नहीं खाते हैं, आज मैं अपने हाथ से, हाथों से बनाऊंगी। इसलिए निर्म मंथ स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथ से दही को मथने के लिए बैठ गई। बहुत सुंदर सुबह भोर का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे यशोदा मैया बहुत बड़े मटके में दही रखी है। पहले यह जूसर और ग्राइंडर नहीं होता था, पहले तो मथनी होती थी, और गांव में एक लकड़ी का पिलर होता था, उसके साथ मटके को रखते थे और रस्सी के साथ उसको मंथन करते थे उनका। आज भी ब्रज वृंदावन और गांव में करते हैं। यशोदा मैया बैठी दही बनाने के लिए, और भगवान के लिए यह बहुत सुंदर कार्य करने लगी। वास्तव में भगवान के लिए जो कार्य करना है यह सुबह करना चाहिए। इसमें लिखा है भोर में ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कार्य कर रही थी। आज तो सुबह 4:30 बजे कब हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। सब लोग सूर्यवंशी हो गए हैं, सूर्य उगने के बाद ही जगते हैं। भागवत में आया है प्रातर हूत हुताग्नय, हम सबको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। भगवान रामचंद्र भी आचरण करके दिखाए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ प्रातः काल जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में। ये ब्रह्म मुहूर्त जो है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को एक गिफ्ट है, और इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे यदि हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं तो स्वाभाविक मन लगता है। और यदि ब्रह्म मुहूर्त निकल गया 7, 8, 9 बज गया, फिर तो कितना भी प्रयास करोगे मन नहीं लगेगा। तो भगवान प्रकृति की जो ये गिफ्ट है उसका लाभ उठाना चाहिए, और इसी से भगवान मिलते हैं। एक बार मैं एक जगह कह रहा था, आज भी यदि आपको भगवान से बात करनी है तो हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं भगवान के साथ बात करनी, हो सकती है आज भी, और उसका मोबाइल नंबर भी है, जानना है आपको। लेकिन यहां पर तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, भगवान का थोड़ा लंबा है, लंबा होगा क्योंकि बहुत लंबे हैं। हमारा नंबर 10 डिजिट का है, भगवान का जो नंबर है 16 डिजिट का है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे राम 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 हरे हरे।
नंबर लगाइए डायरेक्ट बात, परंतु हाँ हमारे रावल प्रभु सब कुछ जानते हैं परंतु करते नहीं है, यही कमी है। नहीं करते भी हैं अब तो 1.5 महीने से तो। नंबर है डायरेक्ट, भगवान से बात कर सकते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि नेटवर्क पूरे दिन बिजी रहता है, हाँ बहुत एंगेज रहता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में लगाओगे एक ही ट्राई में लग जाएगा। प्रयास नहीं करना होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम, भगवान का के लिए सेवा करनी चाहिए। यशोदा मैया बैठी हैं दही मथने के लिए, और भगवान के लिए दही से मक्खन बना रही है, और किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च। भगवान श्री कृष्ण अब तक जो भी लीला किए हैं उस चरित्र को छंद में गा गा कर यशोदा मैया बहुत सुंदर आनंदित होकर यह कार्य कर रही है। ये स्त्रियां जो होती हैं गाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। स्त्रियां गाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं और किसी भी वस्तु को छंद में रखकर कैसे भी कभी भी गा सकती हैं। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की लीला को बहुत सुंदर गाते हुए ये अपने घर का कार्य करती थी। देखिए काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, परंतु काम करते करते भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि हम कार्य करते करते भगवान का नाम लेंगे तो उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, और जो कार्य करने के लिए हम बैठे हैं वह कार्य आसानी से सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहते हुए भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। इसलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर गाया है, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में,
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में,
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में,
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में।
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
विधि का निधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
विधि का निधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
भगवान जैसे भी जिस हालत में रखते हैं उस स्थिति में रहकर भगवान का नाम निरंतर गाना चाहिए। यानी यानी ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। बहुत सुंदर भगवान का गीत गा रही हैं। जब यशोदा मैया कर्म करते करते भगवान के नाम और लीला का गीत गाने लगी तो इस गीत को सपोर्ट करने के लिए यहां तो लालदास बैठे हैं, परंतु वहां यशोदा मैया जो मथनी को चला रही थी वह घर घर आवाज मृदंग का काम कर रहा था। यशोदा मैया के हाथ में जो कंगन था वह कंगन करताल का काम कर रही थी। इस प्रकार यशोदा मैया पूर्ण कृष्णमय होकर कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण के लिए मक्खन बनाने जा रही है। शोमम वासम पृथु कटी तटे बिभ्रती सुक्त नवधम। यशोदा मैया बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर बैठी हैं और वस्त्र पहनकर बैठकर भगवान के लिए ये कार्य कर रही हैं। उनके बाल में मालती के फूल लगे हुए हैं। यशोदा मैया जब भगवान श्री कृष्ण के लिए यह सेवा करने लगी तो यह सभी मालती के फूल बालों से यह मस्तक से गिरकर नीचे आ गए। एक आचार्य बहुत सुंदर प्रश्न उठाते हैं कि यशोदा मैया से वो फूल क्यों गिर गए। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं वह फूलों ने सोचा कि जो व्यक्ति भगवान के लिए काम कर रहा है और काम करते करते भगवान का नाम ले रहा है उसके सिर पे नहीं उसके चरणों में बैठना चाहिए, उसको प्रणाम है। प्रणाम कर दिया फूलों ने और इस प्रकार से यशोदा मैया बहुत सुंदर मक्खन बनाने के लिए बैठी हैं। परंतु उसी समय कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण अंदर के कक्ष में सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जग गए। छोटे से बालक का स्वभाव है जगते ही उसे मां चाहिए, तुरंत मां को ढूंढने लगता है। उस कमरे में मां नहीं मिली, यशोदा मैया नहीं मिली, तो कैसे भी करके कृष्ण उस पलंग से नीचे उतरे और चलते 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 यशोदा मैया जहां पर दही का मक्खन बना रही थी वहां पर आ गए और दौड़ते हुए आकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ यशोदा मैया के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मथनी के ऊपर रख दिया। एक आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं कृष्ण ने मथनी के ऊपर हाथ क्यों रखा, क्योंकि मथनी के ऊपर हाथ रखते ही मथनी बंद हो गई। कृष्ण के हृदय में बोले नहीं, परंतु कृष्ण के हृदय में यह भाव था, मां इस संसार के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ध्यानी ध्यान करते हैं परंतु उसके ध्यान में मैं नहीं, मेरा चरण भी नहीं आता है। योगी लोग योग करते रह जाते हैं परंतु कितना भी योग करने के बाद मैं प्राप्त नहीं होता हूं। बड़े बड़े लोग समाधि लगाते हैं परंतु समाधि में भी मेरा दर्शन नहीं करते हैं कर पाते हैं। वह कृष्ण, मैं आपके घर पर आया हूं, आपके सामने खेल रहा हूं और तुम कहीं और ध्यान दे रही हो। तुम्हें अब कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी कर्म का फल आपके सामने खड़ा है मैया, सभी कर्म का फल आपके सामने खड़ा है। वास्तव में सभी कर्मों के फल भगवान है और जिस कर्म से भगवान नहीं मिलते हैं, भागवत कहता है वह कार्य गधे और बैल की तरह केवल मेहनत है। जिस फल में भगवान नहीं है वह कार्य श्रम एव ही केवलम, वो मात्र श्रम है। फल आपके सामने खड़ा है मैया और तुरंत फिर उस मथनी से हाथ लेकर भगवान यशोदा मैया के गोद में सो गए और सोकर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगे, क्योंकि बालक का स्वभाव है जगते ही उसे दूध चाहिए। यशोदा मैया दूध पिलाने लगी। अब देखिए आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक जगत में ये जो फूल थे इस मस्तक पर ये भी सोचते हैं। तो उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के स्तन का दूध पी रहे थे उसी समय यशोदा मैया ने यही पद्म गंधा गाय का दूध चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा था, कृष्ण को बाद में पिलाने के लिए। यद्यपि वह कृष्ण के लिए ही था, परंतु यशोदा मैया इतनी मस्त हो गई अपने कार्य में कि चूल्हे के ऊपर रखा हुआ दूध उसे याद नहीं आया। जैसे ही कृष्ण यशोदा मैया के स्तन का दूध पान करने लगे, उसी समय रसोई घर में चूल्हे के ऊपर जो दूध था वह बिल्कुल गर्म होकर बाहर आकर गिर गया। उफान आई और वह दूध बाहर निकल गया। एक आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं, वास्तव में जो दूध रसोई घर में गर्म हो रहा था वह सोच रहा था। आध्यात्मिक जगत में दूध भी सोचता है। दूध ने सोचा कि कृष्ण यशोदा मैया के हृदय का दूध पी रहे हैं, अब जो किसी के भक्त के हृदय का दूध पी रहा है तो मैं किस कृष्ण के काम में नहीं आऊंगा, कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे। दूध ने सोचा कि कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे और जो नहीं मेरे राम का वो नहीं किसी काम का। यदि मैं कृष्ण के काम में नहीं आऊंगा तो मेरा जीवन किसके काम के लिए है। यह दूध इतना सोचकर आत्महत्या करने के लिए गिर गया। जरूर जाओ सु जीवन जानकी नाथ जे जग में तुम रो बिन भय। भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना यह जीवन जलाने के योग्य है। जल जाए तो अच्छा, जरूर जाओ सु जीवन। यदि इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं हो रही है तो यह शरीर को जला देना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत इस बात को कहते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ, 14 साल के लिए वन में चले गए और भरत ननिहाल से जब अवधपुरी में घर पर वापस लौटे तब उसे पता चला कि मेरी माँ ने राम को वनवास दे दिया है। भरत जी बहुत दुखी हुए, दुखी होकर अपनी माँ को बहुत डांटे, यहां तक कह दिया कि आज के बाद तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं, तू कहना शुरू कर दिया। क्योंकि जो प्रभु राम से अलग कराए वो माँ माँ नहीं है। माँ तो भगवान से जोड़ती है, भगवान से दूर नहीं करती है। आज से मैं तेरा पुत्र नहीं। कई कई ने यहां तक कहा कि बेटा तू मुझे माँ नहीं कह रहा है, अपनी माँ को माँ नहीं कहने वाला नरक में जाता है। भरत ने कहा एक नहीं 100 जन्म के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूं, परंतु तू मेरी मां कभी नहीं हो सकती क्योंकि तूने मेरे भाई राम को वन में भेजा है। इतना कहते ही भरत ने कह दिया कि अब मैं जा रहा हूं मेरे भाई राम को मिलने के लिए, मैं राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे यहां नहीं रहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े बड़े लोगों ने भरत को रोका कि तुम राज्य करो, अयोध्या का राज्य संभालो। वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, बहुत बहुत लोगों ने कहा, परंतु भरत ने ना कहा। पूरे प्रजा ने, सब ने भरत को कहा कि आप राजा बनो, राज्य संभालो। तब भरत इतना ही कहते हैं, मोहि राज हटू देई हुई जब ही रसा रसातल जाई तब ही। आप हट मत करो, मैं सत्य कहता हूं जिस दिन तुम मुझे राजा बनाओगे उस दिन ये रसा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि अवध के राजा एकमात्र राम ही हो सकते हैं। इतना कह के भरत ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं राम के पास, यदि आप इस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आप भी मेरे साथ चलो। भरत जी निकले हैं और अवध में रहने वाली सारी प्रजा भरत के साथ राम का दर्शन करने के लिए जा रही। उस समय कुछ बड़े बूढ़े कुछ लोगों ने कहा कि भरत जी हम आपके साथ भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा क्यों? तो कुछ लोगों ने कहा बच्चों की एग्जाम है, कैसे आए प्रवचन में। आज के लोग कहते हैं ना, हम मंदिर में कैसे आए बच्चों की, अरे एग्जाम आपकी है कि बच्चों की है, आपको जाना है परीक्षा देने के लिए। मंदिर में आओगे भगवान से प्रार्थना करोगे तो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होगा, नहीं तो आवारा और बदमाश होगा। वास्तव में भजन नहीं करने वालों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि माता पिता का तो कोई संस्कार नहीं होता है। आज की माँ अपने बच्चे को भक्ति नहीं सिखाती, आज की माँ तो सोचती है कि ये बहुत बड़ा हीरो बने। मैं एक सत्य बात बताऊं, बहुत साल पहले मैं एक फिल्म देखने गया था, बहुत साल पहले, तो ऐसे ही थिएटर में बैठा था, तो मेरे आगे एक महिला बैठी थी, अकेली आई थी घर से दोपहर को, पति ऑफिस में गए और ये फिल्म देखने के लिए आई, और गोद में एक बच्चा था बेचारा, 4-5 साल का बच्चा होगा। तो बच्चे को क्या पता चले फिल्म क्या है, हीरो क्या है, हीरोइन क्या है, वो तो सो गया उसकी गोद में। मैं पीछे बैठा था और अचानक वो फिल्म में एक गाना आया, सलमान खान का पिक्चर था, और वह उस गाने में लगभग 15 से 20 लड़कियों के साथ नाच रहा था। तो जैसे ही गाना शुरू हुआ तो वो महिला, वो बच्चा बेचारा सो रहा था, जगाया, बेटा बेटा देख, बेटा देख, वो जग नहीं रहा है परंतु ये जगा रही है, आंखों देखा हाल। वास्तव में तब तो मैं इतना भक्त नहीं था इसलिए पिक्चर देखने गए, परंतु इतनी तो बुद्धि थी मुझ में कि ये क्या कर रही है, बेटा देख सलमान खान नाच रहा है, जग गया लड़का। आज की नारियों के संस्कार ऐसे हैं। अब बताइए फिर वह लड़का बड़ा होकर किसी लड़की को लेकर भाग नहीं जाएगा तो क्या करेगा? फिर माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा लड़की को लेकर भाग गया, तो क्या नहीं करेगा, चोरी करेगा, भागेगा, यही तो करेगा, जो सिखाया है वही करेंगे। मां बाप जो करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भरत जी हम राम का दर्शन करने के लिए कैसे, एग्जाम चल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ऑफिस में कौन जाएगा, ऑफिस वाले भी कुछ होंगे, यहां आपके साथ भगवान राम का दर्शन करने के लिए आएंगे तो धन का ख्याल कौन रखेगा, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा। उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं भरत जी ने इतना यहां तक कह दिया, जर उस संपत्ति सहद सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सनमुत होत जो राम पद करे न सहस सहाय। भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए यदि पत्नी धन और घर बाधा बनता है तो ये तीनों को जला देना चाहिए, क्योंकि ये स्नेही स्वजन किसके लिए बने हैं? इस संसार के स्नेही माता पिता बच्चे इसलिए बने हैं ताकि भगवान के पास हम जाए। ये जितने भी संबंध है ये संबंध भगवान की प्राप्ति करने के लिए है, नहीं कि उसे दूर करने के लिए। वेद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया गया है, ये वर्ण और आश्रम का धर्म क्यों है? हम सब लोग विवाह करके बच्चे क्यों बनाए हैं? भोग भुगाने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। परंतु इस बात को कोई जानता नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, और जो शास्त्र जानते हैं उससे कभी सुना नहीं है। मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में जितने भी वर्ण है आश्रम है, ये वर्ण और आश्रम का एक ही सार है कि व्यक्ति भजन करे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे। कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, कितना भी धन है, नौकर चाकर गाड़ी बंगले पति पत्नी और बच्चे हैं, परंतु यदि कृष्ण नाही भजे, यदि कृष्ण का भजन नहीं करते हो, ते सहित पापी रोरव पड़े मजे, ऐसा पापी नरक में जाकर गिरता है। हो सकता है संसार में उसका नाम हो, बड़ाई हो रही हो, परंतु कितना भी अच्छा संबंध निभाने वाला, कितना भी अच्छा देश सेवक समाज सेवक भजन नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वे नरक में जाकर गिरता है, भागवत प्रमाण है। अब ऐसा मत सोचिए मैं आपको मनोरंजन करने के लिए बैठा हूं, मैं भागवत बोलने के लिए बैठा हूं, और भागवत के ऊपर सबका विश्वास होना चाहिए। और गीता और भागवत के ऊपर विश्वास नहीं है तो यहां पर बैठने से कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम वेस्ट है। गीता और भागवत वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और इस शास्त्र को स्वीकार करना ये मनुष्य का धर्म है। तो जीवन में बाधा बनने वाले हमारे संबंधी नहीं है, भगवान का भजन कराने वाले वास्तविक संबंधी। मैं कहां से यहां पहुंच गया, कृष्ण लीला से रामलीला में आ गया। अच्छा हाँ, इसे याद कराने वाले भी रखने चाहिए। वेदों में लिखा है, भागवत में लिखा है, कभी भी आप भागवत शब्द करने बैठेंगे तो 2-3 जन को रखना चाहिए याद कराने के लिए, क्योंकि हम पहले से लिखकर नहीं आते हैं कि ये लिखकर आए हैं यही बोलेंगे, तो भगवान की कृपा से जो भी मन में आता है बोल देते हैं, भगवान की कृपा है। तो मैं यह कह रहा था कि यशोदा मैया जब अपने हृदय का दूध पिला रही थी तब किचन में रखा हुआ दूध उफान मार गया और आत्महत्या करने के लिए गिर गया। उन्होंने यही सोचा कि मेरा जीवन भगवान की सेवा में नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। भक्तों, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषि का अर्थ होता है यह इंद्रिया और ईश का अर्थ होता है स्वामी। वास्तव में इस इंद्रियों के स्वामी एकमात्र भगवान है, इसलिए इस इंद्रियों से भगवान की सेवा करना यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही सबसे उच्च भक्ति है। तो दूध वहां पर आत्महत्या किया। यशोदा मैया ने देखा कि दूध गिर रहा है और कृष्ण उस समय उनके स्तनों से दूध पान कर रहे थे। यशोदा मैया ने एक ही सेकंड में सोच लिया कि स्तनों का दूध तो स्तन में रहने वाला है, परंतु रसोई घर में जाकर वो दूध नहीं निकाला तो बिगड़ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को वहां से अपने आंचल से छुड़ाकर नीचे बैठाया और रसोई घर में जाकर उस दूध को बचा लिया। और वह दूध कृष्ण के लिए था, परंतु यहां कृष्ण ने सोचा, लो इस संसार में सबको छोड़कर जिसके घर पर आया हूं वह 25 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। भगवान भी उनके भाव में है, बच्चे के भाव में है। अरे मैं परब्रह्म, लोग मुझे प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बेचारे मर जाते हैं जीवन भर भजन करते करते, और यहां मैं आकर बैठा हूं तो मुझे छोड़ दिया। क्या भाव है दूध का? 25, 28 या 30 होगा, पद्मगंधा का कुछ ज्यादा होगा। मुझे छोड़ दिया, कृष्ण क्रोधित हो गए। वास्तव में भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है, परंतु ये सब लीला है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। अब आप सोचिए, ये सुनने में आपके, देखिए सबके मुख हंसते हुए चेहरे हैं, ये सुनने में इतना आनंद है तो उस समय देखने में कितना आनंद आता होगा। परंतु आज भी हम भगवान को देख सकते हैं, आज भी भगवान हमारे साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उसका लालन पालन कर सकते हैं। परंतु एक ही चीज होनी चाहिए, उनकी भक्ति। प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को आज भी देखते हैं, आज भी उनके साथ खेलते हैं और लीला करते हैं। श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भगवान क्रोधित हो गए, लो मुझे छोड़ दिया, आज तो मैं दिखा कर रहूंगा। ये मैया जानती नहीं है मुझे, आज मैं दिखा कर रहूंगा। कृष्ण क्रोधित, क्या करूं क्या करूं। तब जिस मटके में बहुत सारी छाछ और दही भरकर यशोदा मैया बैठी थी, कृष्ण ने सोचा इसे फोड़ डालूंगा, तब जाकर इसे पता चलेगा कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। फोड़ने के लिए क्या करे, क्योंकि छोटे छोटे हाथ हैं बेचारे, कृष्ण तो बहुत छोटे हैं। क्या करे क्या करे, तो बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर की शिला को लेकर देखिए कितने बुद्धिमान है, ये बालक है परंतु सबका बाप है। वल्लभाचार्य कहते हैं, बाले बाले ब्रह्मा प्रकटे, ये बालक को बालक मत समझो, इसके बाल बाल में ब्रह्मा और ब्रह्मांड प्रकटते हैं, ये साधारण बालक नहीं है। तो पत्थर लिया और पत्थर लेकर जो बहुत बड़ा मटका था बिल्कुल नीचे छेद किया, क्योंकि ऊपर किया होता तो थोड़ा छाछ और मक्खन दही बच जाता, नीचे किया ताकि सारा बाहर निकल जाए। नीचे उस पत्थर से छिद्र किया, एक होल हो गया और सारा छाछ दही मक्खन बाहर फैलने लगा। धीरे 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 जैसे फैल दे गया, अब करते करते कार्य तो हो गया, परंतु जैसे ही अब मक्खन छाछ दही बाहर आया तब कृष्ण को भयंकरता महसूस हुई। कार्य तो मैं कर चुका हूं, परंतु मां को पता चलेगा तो मुझे डांटेगी और मारेगी। भगवान भक्त से डरते हैं, बाकी और किसी से नहीं डरते हैं। मैया मुझे मारेगी, अब कृष्ण तो ढूंढने लगे कहां छिपू कहां छिपू, छिपने की जगह ढूंढने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से दौड़कर एक पर्दे के पीछे उखल के ऊपर जाकर छिप गए। और यशोदा मैया जब अपने रसोई घर से आकर देखी तो सारा कमरा छास दही और मक्खन से भर गया था। सबसे पहले यशोदा मैया को हंसी आ गई। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि थोड़ी हंस दी। हंसी इसलिए आई, यशोदा मैया ने सोचा कि नहीं, बालक बुद्धिमान है, लड़का बुद्धिमान है, क्योंकि फोड़ा तो बिल्कुल नीचे से फोड़ा, ऊपर से कहीं नहीं फोड़ा। परंतु दूसरे क्षण में क्रोध आ गया कि इतना महंगा मक्खन, इतनी मेहनत और इसने बिगाड़ दिया। अब तक यशोदा को संशय था, ये गोपियां जो आती थी शिकायत करने के लिए, अब तक संशय था, परंतु इस कार्य को देखकर यशोदा को कन्फर्म हो गया कि यह सबके घर पे जाकर चोरी करता ही होगा। कन्फर्म हो गया। यशोदा मैया बहुत क्रोधित हुई, क्रोधित होकर हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी। कहां है कृष्ण, आज तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। ढूंढा कृष्ण को दो तीन जगह पर और वहां पर्दा हिल रहा था। पर्दे के पीछे, पर्दे को जब खोला तो उखल के ऊपर कृष्ण छिप कर खड़े थे। जैसे ही मैया और मैया के हाथ में छड़ी देखी, छड़ी देखकर कृष्ण उखल से कूद पड़े और कूद कर वहां से भागने लगे। अब कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया यशोदा उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। छोटे छोटे पांव हैं, छोटे छोटे कदम भर रहे हैं और बहुत तेज गति से कृष्ण दौड़े, कभी इस कमरे में कुछ, कभी उस कमरे में, यशोदा भी पीछे पीछे। और फिर तो कृष्ण प्रांगण में आ गए, फिर तो गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। सारी गोकुल की गलियों में दौड़ाकर फिर अपने घर पर बहुत भगाए। यशोदा मैया का शरीर बहुत मोटा था, सुखदेव गोस्वामी लिखते थे, क्योंकि खाते पीते घर की थी ना, और खाते पीते घर के भी थे, परंतु किसी भी बात का टेंशन नहीं था। ये शरीर नहीं बनता है टेंशन के कारण। कुछ लोग बहुत खाते हैं परंतु शरीर नहीं बनता है, क्योंकि चिंता इतनी करते हैं, चिंताग्रस्त है सब लोग। चिंता और चिता, ये दो शब्द समान समन्वय है, केवल अनुस्वार भेद है, चिंता और चिता। और ये दोनों का काम है जलाना, तो दोनों में से ज्यादा कौन जलाती है? एक आचार्य कहते हैं चिंता चिता अपि गरियसी, चिंता जो है चिता से ज्यादा जलाती है, क्योंकि चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, परंतु चिंता जीवित व्यक्ति को रात दिन जलाती रहती है। और इस चिंता के कारण व्यक्ति बिल्कुल सूख जाता है। कितना भी भोजन करे शरीर नहीं बनता है, परंतु जिसको चिंता नहीं है, मेरे जैसे देखो, कितना भी डाइटिंग करो, कितना भी कम खाओ, पानी पियो, फिर भी शरीर बढ़ रहा है। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सारी चिंता भगवान को है, प्रभु आपको जो करना है करो। यही भक्त का भाव होता है, प्रभु यदि हमारे जीवन में दुख आया तो लोग कहेंगे कृष्ण का भगत था बेचारा, दुखी हो गए, इसलिए हम इनकी भक्ति नहीं करेंगे, पेपर में आ जाएगा। भगवान आपको अपना नाम रखना है तो हमारा ख्याल रखो, नहीं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। एक भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तपते मन में कछु ऐसी बसी है। हे प्रभु, जिस दिन से आपका नाम मैंने दीन दयाल सुना है, भगवान का एक नाम दीन दयाल है, जिस दिन से मैंने सुना है कि आपका एक नाम दीन दयाल है, दीनों के नाथ हो आप, दीन के ऊपर कृपा करते हो, उससे मेरे मन में, उस दिन से मैंने सोच कर रखा है कि अब और कुछ नहीं करना है, केवल भजन और भक्ति करना है। और भजन भक्ति जब करता हूं तो संसार के लोग हंसते हैं, ये क्या बड़ा बड़ा तिलक और माला लेकर घूमते रहता है, हंसते हैं, परंतु प्रभु ये मेरी हंसी नहीं है। यदि संसार के लोग मेरे ऊपर हंसे तो ये मेरी नहीं, ये तो आपकी जग हसाई है, ये लोग आपके ऊपर हंसते हैं। तो प्रभु आपको इस बंदे का ख्याल रखना है तो रखे, नहीं तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। वे लिखते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे मुरारी, मेरी हंसी नहीं है संसार में, तेरी हंसी है। तो इस प्रकार यशोदा मैया को कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उनका शरीर थोड़ा मोटा था, इसलिए दौड़ कृष्ण को पकड़ते पकड़ते थक गई, पसीना निकलने लगा। वास्तव में कृष्ण किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत घुमाए, बहुत दौड़ाए, परंतु ये किसी के पकड़ में आने वाले नहीं है, कृष्ण का स्वभाव है। ये किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, और किसी के पकड़ में आ जाते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं। पहले तो बहुत रुला मारते हैं, बहुत तड़पाते हैं अपने भक्त को, जैसे यशोदा को अभी तड़पा रहे हैं, दौड़ रही है, पसीने से लथपथ है। इस संसार में साधक भी रात दिन माला करते रहता है, कथा सुनते रहता है, फिर भी भगवान, परंतु फिर भी यशोदा हिम्मत नहीं हारी। देखो, भगवान का साक्षात्कार हो या न हो, परंतु हमें साधन भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान प्रयास देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया बहुत प्रयास कर रही है, बिचारी प्रयास कर रही है। यशोदा मैया के प्रयास को देखकर भगवान के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। साधक के प्रयास को देखकर भगवान का हृदय पिघलता है, नहीं तो साधना में शक्ति नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। साधक का प्रयास भगवान को पिघलाता है। यशोदा का प्रयास कृष्ण को पिघला दिया, और कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं इनके हाथ में नहीं आऊंगा तो बिचारी बहुत दुखी हो जाएंगी, इसलिए कृष्ण ने अपनी गति धीमी कर ली, और यशोदा मैया ने झपट करके कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण को हाथ में ले लिया, और कृष्ण को हाथ में जैसे ही लिया कृष्ण रोने लगे। कृष्ण इसलिए नहीं रोए कि यशोदा ने पकड़ लिया, दूसरे हाथ में लकड़ी को देखकर कृष्ण रोने लगे कि अब ये छड़ी से मारेगी, मुझे पीटेगी। यशोदा मैया ने सोचा कि बालक रो रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा मैया ने लकड़ी को छोड़ दिया और कृष्ण को डांटने लगी, तू ही गांव में चोरी करता है, तूने ही ऐसा किया है, आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी, और तू नहीं, ये चोरी करने में साथ देने वाला ये उखल भी है, इसके सहारे तू ये गलत काम करता है, तुझे और उखल को दोनों को बांध दूंगी। और अंदर के कमरे में जाकर कृष्ण को और उखल को बांधने के लिए रस्सी से प्रयास करने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यशोदा ने बहुत प्रयास किया, परंतु यशोदा कृष्ण को उखल से बांध नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही उखल से बांधने के का प्रयास करती और जब गांठ लगाने जाती, तब दो उंगली व रस्सी कम पड़ जाती। फिर यशोदा ने अपने घर पर जितनी भी रस्सी थी और उस रस्सी को जॉइंट करके लंबी रस्सी बनाई, परंतु वह लंबी रस्सी भी दो रस्सी कम पड़ गई। अपनी दासियों को कहा कि गांव में जितनी रस्सी है सब लेकर आओ, सभी रस्सियों से इसे बांधूंगी। गोपियों ने कहा छोड़ो यशोदा मैया, आखिर कान्हा के नसीब में बंधन नहीं लिखा है। यशोदा ने कहा तुमने ही बिगाड़ कर रखा है इसे, जाओ जल्दी लेकर आओ। सारी गोपियां गई, गोकुल में जितनी भी रस्सी थी ये सभी रस्सी ज्वाइंट करके कृष्ण को बांधने गई, फिर भी दो उंगली कम। यशोदा मैया कृष्ण को बांधते बांधते थक गई। भगवान ने देखा कि बिचारी बहुत प्रयास कर रही है, इसलिए अपने भक्त का प्रयास देखकर भगवान की करुणा नहीं रह सकी। वास्तव में भगवान में असीम करुणा है, इसलिए तो कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर। करुणा का सागर अपनी करुणा बरसा दिया, और यशोदा के हाथ से भगवान श्री कृष्ण उस उखल के साथ बंध गए, बांध दिए, और कृष्ण को कहा कि यही तेरे लिए सजा है, और सभी गोपियों को कहा चलो यहां से निकलो, कोई यहां पर नहीं आएगा। और कृष्ण को वहां उखल के साथ बांध कर अकेला छोड़ दिया, और यशोदा और सब लोग घर से बाहर निकल गए। कृष्ण जो संसार के सभी लोगों को बांधते हैं, संसार के सभी लोगों को नचाते हैं, उसे आज उसका भक्त नचा रहा है। कृष्ण को बांध दिया, कृष्ण बंध गए, यह खबर पूरे ब्रज में फैल गई। उस दिन दाऊजी बलदेव जी रोहिणी के साथ किसी के घर पर भोजन करने के लिए गए थे, और वहां बलदेव जी को पता चला कि कृष्ण को किसी ने बांध दिया। अब यह नहीं पता चला कि यशोदा ने बांधा है, परंतु केवल आधी खबर मिली। वह आधी खबर क्या थी? कृष्ण को किसी ने बांधा है। बलदेव जी भोजन भोजन सब कुछ छोड़ दिए, किसने बांधा है? कृष्ण को बांधने वाला संसार में कौन पैदा हुआ है? आज उसके जीवन का अंतिम दिन है। वो मुझे नहीं पहचानता है, मैं संकर्षण हूं, मैं शेष हूं, एक दृष्टि से उसे मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलते बोलते भाई लोग की तरह आ रहे थे। जैसे होता है ना संसार में, किसी का झगड़ा हो जाता है तो भाई लोग को फोन लगाते हैं, आप आइए, और रास्ते में ही गाली देते देते आते हैं। बलदेव जी आ रहे थे पूरे उत्साह के साथ, मार डालूंगा, भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा। जानते नहीं हो मेरे सिर के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड है, थोड़ा सा सिर हिल गया तो सभी ब्रह्मांड गिर जाएंगे। इतना क्रोध करते करते आ रहे थे, आए पता चला यशोदा ने बांधा है, सारी हवा निकल गई, सारी हवा यशोदा ने बांधा है, तो कुछ नहीं हो सकता है। यशोदा के अलावा किसी ने भी बांधा हो तो आज वो भगवान को प्यारा हो गया होता, परंतु अब क्या करे, यशोदा ने बांधा है। बलदेव जी भी ढीले हो गए, भक्त के सामने भगवान की कुछ नहीं चलती, तो क्या करे। अब खबर लेने के लिए गए, जब कोई दर्दी हॉस्पिटल में होता है तो खबर लेने जाते हैं। अब बलदेव जी ने सोचा चलो छुड़ा तो नहीं पाऊंगा परंतु देख तो आऊं कैसे है। बलदेव जी गए, कृष्ण को जिस कमरे में बांधा था वहां जाकर बलदेव जी खड़े रहे। कृष्ण बड़े भाई को देखकर भैया करके रोने लगे और बलदेव जी डांटने लगे, मैंने कहा था चोरी मत करना, लेकिन फिर भी किया, आप सजा भोग दो। बलदेव जी चोरी में भाग नहीं लेते थे, बड़े भाई थे। इतना कह के बलदेव जी भी रोने लगे, दोनों भगवान आज रो रहे हैं। ये है भगवान की लीला संसार को। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान की एक छोटी सी शक्ति है माया, उस माया से आज पूरा जगत रो रहा है, उस माया से दुखी होकर आज पूरा जगत हो रहा है। वो भगवान करुणा का सागर, करुणा के सागर की आंखों से आज करुणा निकल पड़ी, आंसू निकल गया। सत्यव्रत मुनि वेद व्यास जी इस दृश्य के ऊपर बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। आने वाले कार्तिक के महीने में रोज यह प्रभुपाद जी का आदेश है कि रोज हमारे मंदिर में सुबह शाम यह भजन गाया जाता है। नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, बहुत सुंदर भाव। अब समय तो हो चुका है, नहीं तो यह कथा करते करते 5 घंटा बीत जाए तब भी पता न चले। देखिए इसे कथा कहते हैं। यह है वास्तव में श्लोकों के अर्थों के साथ कथा कहना और समझना, नहीं तो संसार में कुछ कथाकार होते हैं, कथा करते हैं। एक समय की बात, यशोदा मक्खन से दही बना रही थी, कृष्ण आए, मटकी फोड़ दी, यशोदा मैया उसे के पीछे घूमी, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया और नल कुबेर मणिग्रीव नाम के वृक्ष दोनों गिर गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, हो गई कथा। ऐसे भी कथा हो सकती है, परंतु वास्तव में इसे केवल ऊपर ऊपर से सुनना कहते हैं। अरे हम सब भक्त तो ऊपर ऊपर रहने वाले नहीं है। समुद्र में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो किनारे पर ऊपर ऊपर रहती हैं, परंतु बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र की गहराई में जाती हैं और अवगाहन करती हैं। छोटे छोटे भक्त होते हैं ऊपर ऊपर रहते हैं, परंतु बड़े बड़े भक्त और जो बड़े भक्त बनना चाहते हैं वो समुद्र की गहराई में जाकर भगवान की गूढ़ लीला और गूढ़ तात्पर्य को जानते हैं। तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा है, बलदेव जी वहां पर आए और वे भी छुड़ाने का प्रयास किए परंतु नहीं छूटे। तो आगे भी बहुत एक सुंदर लीला है, परंतु मैं यहां पर मेरी वाणी को विराम करता हूं। इस लीला को टू बी कंटिन्यू कल किया जाएगा।